तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक ऑस्कर विनिंग हॉरर मूवी को जिसका नाम है गेट आउट, जो कि 2017 में रिलीज की गई थी और इसको डायरेक्ट किया है जॉर्डन पील ने, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है, यानी कि उनकी पहली मूवी है एज अ डायरेक्टर। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही खतरनाक है, यानी कि आप रेयरली हॉरर मूवीज में इतनी ज्यादा रेटिंग देखोगे। और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी मूवी मात्र 23 दिन में शूट करी गई थी। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर ये एक नई सीरीज है जहां पर मैं हर एक ऑस्कर हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो यहाँ पर आप लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट कर देना कि हाँ मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए। और हाँ, आज की वीडियो के अंदर एक गिव अवे होने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर पिछले गिव अवे विनर्स के नाम भी अनाउंस होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर 5 लोगों ने 500 रुपीज के अमेजोन वाउचर्स जीत लिए हैं। इन विनर्स के नाम है प्रकाश कुमार, कुलवंत सिंह, सहाजत अली, मानसी शर्मा और तरुण तेज। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। एंड ऑलरेडी विनर्स को एक ईमेल आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड नो फेक आईडीज प्लीज, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इन सभी विनर्स की ऑफिशियल मेल आईडी है वेरीफाई करने के लिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत एक ब्लैक आदमी को दिखाते हुए होती है, जो कि रात में एक सुनसान रास्ते पर चल रहा होता है। वहां पर वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि तभी अचानक से वहां पर एक व्हाइट कार आती है और उस कार के अंदर से एक आदमी उतरता है और उसको किडनैप कर लेता है। अब इस मूवी के अंदर मैं आपको थ्रू आउट ब्लैक पर्सन या फिर व्हाइट पर्सन कहता हुआ दिखाई दूंगा, क्योंकि यहाँ पर रेसिज्म को काफी स्पेसिफाई करा गया है और यहाँ पर इसका काफी स्पेसिफिक रोल है, तो आप इसे ऑफेंड मत होना, इट्स स्ट्रिक्टली फॉर द मूवी। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और एक ब्लैक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस था। वो पेशे से एक फोटोग्राफर है और फिल्म मेकर भी होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम रोज है। अब यहाँ पर क्रिस थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रहा था और वो एक गैलरी में अपने फोटोज को सेल किया करता था, लेकिन अगर क्रिस के पास में यहाँ पर कैश करो ऐप होता तो वो इतना स्ट्रगल नहीं करता और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट भी वो परचेस कर सकता था। जी हाँ, क्योंकि अभी मिंत्रा से लेकर आजियो पर जबरदस्त सेल चल रही है विद 90% डिस्काउंट। लेकिन अगर इसी शॉपिंग पर फ्री पैसे भी कमाने हैं तो एक स्मार्ट ट्रिक बताता हूँ जिसको 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब अमेजोन, आजियो या मिंत्रा के डिस्काउंट के ऊपर और भी पैसे बचाने हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कमाना है तो सीधा जाना है कैश करो पर, जो कि शॉपिंग करने के फ्री पैसे देता है, जिस पर अमेजोन, आजियो, मिंत्रा से लेकर बिग बाजार सब मिलेंगी और एग्जिस्टिंग डिस्काउंट के ऊपर अप टू 30% एक्स्ट्रा कैशबैक अलग से। और कैशबैक का मतलब है कि हर शॉपिंग पे फ्री पैसे। यहाँ पर कैशबैक दोनों यानी कि COD और ऑनलाइन पेमेंट पे आपको मिलेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि कैशबैक का पैसा सीधा बैंक में जमा कर सकते हो या फिर वहां से निकलवा सकते हो, और टेंशन की बात तो कोई है ही नहीं क्योंकि ये ऐप रतन टाटा के द्वारा फंडेड है। अब ये ऐप यूज करना काफी ज्यादा सिंपल है, खाली 2 स्टेप्स हैं। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज मैं इस चैनल पर एक गिव अवे करने वाला हूं जिसके अंदर आप 500 रुपीज के कई सारे वाउचर्स जीत सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करो और 25 रुपीज का बोनस आपको तुरंत मिल जाएगा, या फिर अलग से प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आप मेरा कोड GHOST25 यूज कर लेना तो भी आपको 25 रुपीज का बोनस मिल जाएगा। अब होम पेज पर कोई भी मनपसंद की वेबसाइट जैसे कि Amazon सर्च करो और ऑरेंज बटन पर क्लिक करो, जैसे चाहे शॉपिंग करो और अपना कमाया हुआ कैश बैक माई अर्निंग सेक्शन में आप चेक कर सकते हो, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो, बस इतना है। तो जाओ जल्दी से ऐप को ट्राई करो और कम से कम महीने के पेट्रोल का खर्चा या फिर ट्रिप का खर्चा तो निकल ही जाएगा। अब इस हफ्ते क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली मेंबर से मिलने वाला था। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिस काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली को ये बात पता नहीं थी कि वो एक ब्लैक लड़का है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे फिर से बताती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और हमारी फैमिली यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट पर भेदभाव नहीं करती। फिर हम ये देखते हैं कि वो दोनों ही रोज की फैमिली से मिलने के लिए कार में निकल जाते हैं, मगर तभी एक हिरन उनकी कार के सामने आ जाता है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी वो लोग जल्दी से पुलिस ऑफिसर को कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात काफी अजीब होती है, जब एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त यहाँ पर कार रोज चला रही होती है, लेकिन पुलिस वाला बार बार क्रिस से ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा था। अब यहाँ पर रोज को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको ये लग रहा था कि क्रिस ब्लैक है और इसलिए पुलिस वाला इतना इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर रहा है। खैर, ये मामला खत्म होने के बाद में वो लोग पहुंच जाते हैं रोज के फैमिली हाउस में। अब रोज के फादर का नाम यहाँ पर डीन होता है, जो कि एक न्यूरोसर्जन थे, और उसकी मदर का नाम मिसी था, जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट है। अब रोज के माता पिता यहाँ पर क्रिस को काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। वो कपल क्रिस को देखकर काफी खुश भी थे। अब उस घर के अंदर दो नौकर भी थे और एक का नाम यहाँ पर वॉल्टर था और दूसरे का नाम यहाँ पर जॉर्जिना होता है। वो दोनों ही ब्लैक थे और ये देखकर क्रिस को थोड़ा सा अजीब लगता है कि आखिर गोरे लोगों के घर के अंदर दो ब्लैक लोग कैसे हैं। अब इसी बारे में वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर रोज के फादर पहुंचकर ये बताते हैं कि ये दोनों तब से वहां पर हैं जब रोज के ग्रैंडफादर जिंदा थे और उनके मर जाने के बाद में वो दोनों हमेशा के लिए इसी घर में रह गए हैं। अब यहाँ पर रोज के पिता क्रिस को एक जरूरी बात बताते हैं कि 90s के समय में उसके पिता एक ब्लैक पर्सन से हार गए थे क्योंकि वो एक एथलीट हुआ करते थे, यानी कि रेस में वो उस पर्सन से हार गए थे। अब ये बात इतनी जरूरी क्यों है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। खैर उसके बाद में सभी लोग बाहर बैठकर बात कर रहे थे और क्रिस अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है। तभी उन्हें ये पता चलता है कि क्रिस स्मोक करता है लेकिन अब वो धीरे धीरे स्मोकिंग को कम कर रहा है। डीन वहां पर ये कहता है कि वो भी पहले बहुत स्मोक करता था लेकिन बाद में मिसी की थेरेपी से वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया और उसने स्मोकिंग पूरी तरह से छोड़ दी और इसलिए अगर वो चाहे तो वो भी मिसी की थेरेपी ले सकता है। यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि कुछ ही दिन में इनके घर पर एक गैदरिंग होने वाली है, यानी कि एक पार्टी होने वाली है। अब रात को डिनर के समय क्रिस यहाँ पर जेरेमी से मिलता है जो कि रोज का छोटा भाई था और जेरेमी यहाँ पर काफी रेसिस्ट कमेंट भी करता है। खैर पूरी फैमिली क्रिस को लेकर काफी खुश हो रही थी। अब ये सब क्रिस भी नोटिस करता है लेकिन वो रोज की वजह से ये सब इग्नोर करने लगता है। उसके बाद में क्रिस और रोज एक साथ सो रहे होते हैं लेकिन क्रिस को नींद नहीं आती और इसलिए वो घर के बाहर नाइट वॉक पर निकल जाता है लेकिन उसी वक्त वॉल्टर उसकी तरफ दौड़ते हुए आने लगता है और क्रिस के एकदम पास से होकर गुजर जाता है जिससे कि क्रिस डर जाता है और समझ नहीं पाता कि असल में उसने ऐसा क्यों किया। साथ ही साथ वो जॉर्जिना को भी देख पाता है जो कि खिड़की के पास में खड़ी हुई थी और बहुत ही अजीब तरह से बाहर देख रही थी लेकिन कुछ ही देर के बाद में वो वहां से चली जाती है। अब क्रिस घर के अंदर जाता है और तभी मिसी उसे अपने कमरे में बुलाती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। बात करते करते मिसी क्रिस को हिप्नोटाइज करने लगती है और कहती है कि इससे क्रिस की स्मोकिंग हैबिट खत्म हो जाएगी। अब हिप्नोटाइज करते टाइम में मिसी एक चम्मच घुमाती है और हम देखते हैं कि क्रिस पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था और वो अपने शरीर को भी रोक नहीं पा रहा था जिससे वो हिप्नोटाइज हो जाता है और उसी वक्त वो एक अंधेरी जगह पर गिरता जा रहा था जो कि बिल्कुल एक वॉइड जैसा दिखाई देता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि वो तुरंत ही नींद से जाग उठता है और उसको ये लगता है कि ये एक बुरा सपना था। फिर वो फोन को चार्जर में लगाकर बाहर निकल जाता है और बाहर वो वॉल्टर से मिलता है और रात वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूछता है। वॉल्टर ये कहता है कि वो उस वक्त एक्सरसाइज कर रहा था और वॉल्टर उसकी इस हरकत के लिए क्रिस से सॉरी कहता है और वो उससे कुछ अजीब तरह से बात भी करने लगता है। क्रिस को यहाँ पर उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है और उसको यकीन हो जाता है कि कल रात जो उसने देखा था वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी, यानी कि मिसी ने उसको वाकई यहाँ पर हिप्नोटाइज किया था। और सबसे बढ़िया बात यह थी कि उसने स्मोकिंग भी क्विट कर दी थी क्योंकि वो जब भी स्मोकिंग के बारे में सोचता था तो उसको अजीब सी फीलिंग होने लगती थी। खैर अब पार्टी वाला दिन आ जाता है और वहां पर डीन के कई सारे दोस्त और रिलेटिव पार्टी में आ जाते हैं और वो सब क्रिस को उसकी बॉडी को टच करके उसकी बॉडी की तारीफ कर रहे थे जो कि काफी अजीब था। यहाँ पर क्रिस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है और दोस्तों यहाँ पर एक बात देखने वाली ये थी कि हर कोई क्रिस की तारीफ करता रहता है। तभी क्रिस इन गोरे लोगों के बीच में एक सांवले रंग के आदमी को देखता है और सोचता है कि इनसे थोड़ी बात की जाए। उस आदमी का नाम यहाँ पर लोगन होता है और जब क्रिस उससे बात करता है तो उसको काफी अजीब लगता है क्योंकि वो उससे काफी अजीब तरह से बात कर रहा था क्योंकि वहां पर उसकी उम्र देखकर ये लग रहा था कि वो तो बस 20 से 30 साल का है मगर उसके बात करने के तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि कोई बुजुर्ग आदमी उससे बात कर रहा हो। और उसकी बीवी जो थी वो एक वाइट पर्सन थी जो कि उससे कम से कम 35 साल उम्र में बड़ी होगी। क्रिस को ये सारी चीजें काफी अजीब लगती हैं। अब उस फैमिली पार्टी के अंदर क्रिस यहाँ पर जिम हडसन नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि यहाँ पर विजिबली ब्लाइंड था। उसकी एक आर्ट गैलरी भी थी और क्रिस अपने क्लिक की हुई फोटोज को उसी गैलरी में बेचा करता था। वो दोनों शायद से एक दूसरे को पहले से ही पहचानते थे। वो दोनों एक साथ काफी देर तक बातें भी करते हैं। फिर उससे बात करने के बाद में क्रिस अपने कमरे में चला जाता है लेकिन जैसे ही क्रिस अपने कमरे के अंदर जाता है तो सारे के सारे जो गेस्ट होते हैं वो अपनी बातचीत को छोड़कर यहाँ पर क्रिस को ही देखने लगते हैं जैसे कि यहाँ पर वो कोई एक्ट कर रहे हो क्रिस को दिखाने के लिए। अब क्रिस अपने कमरे में जाकर ये देखता है कि उसके फोन को किसी ने चार्जर से निकाल दिया है। उसको ऐसा लगता है कि ये चीज जरूर यहाँ पर जॉर्जिना ने की होगी, क्योंकि जॉर्जिना शायद से उसको पसंद नहीं करती। अब वो जल्दी से अपना फोन चार्जर पर लगाता है और वो अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है, जो कि एक और ब्लैक पर्सन है और वो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर होता है। क्रिस उसको सब कुछ बताता है और वो ये भी बोलता है कि कैसे रोज की मॉम कैसे उसको हिप्नोटाइज करती है। तो रॉड को यहाँ पर ये लगता है कि ये गोरे लोग ब्लैक लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको नौकर बनाकर रखते होंगे। रॉड क्रिस को ये कहता है कि वहां से वो जल्दी से जल्दी निकल जाए, लेकिन क्रिस को ऐसा लगता है कि रॉड यहाँ पर बेवजह ही टेंशन ले रहा था, इसलिए वो उसका फोन कट कर देता है। अब तभी वहां पर जॉर्जिना आ जाती है और वो उससे यहाँ पर माफी मांगती है। उसका ये कहना था कि काम करते टाइम वहां पर गलती से उसका हाथ उसके फोन पर लग गया, जिसकी वजह से चार्जिंग केबल फोन से अलग हो गई होगी, जिसके बाद में क्रिस उसको माफ कर देता है और खुद ही बुरा फील करने लगता है। लेकिन फिर से यहाँ पर क्रिस यही नोटिस करता है कि जॉर्जिना यहाँ पर जवान होते हुए भी अजीब सी बातें कर रही थी, जैसे कि बुजुर्ग लोग किया करते हैं, और हम जॉर्जिना की आंखों से आंसू आता हुआ भी देख पाते हैं, जिससे हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर है। खैर, अब यहाँ पर क्रिस को ऐसा लगता है कि लोगन नाम के आदमी को उसने पहले कहीं ना कहीं देखा है, मगर उसको याद ही नहीं आता। इसलिए क्रिस यहाँ पर लोगन की एक फोटो खींचने के लिए नीचे जाता है, मगर गलती से फोटो खींचने के वक्त यहाँ पर फ्लैश ऑन हो जाता है, और इसके बाद में हम ये देखते हैं कि लोगन की नाक से खून आने लगता है और वो काफी अग्रेसिव हो जाता है और वो क्रिस के साथ मारपीट करने लगता है। वो क्रिस को ये कहता है कि गेट आउट, गेट आउट। तभी वहां पर मौजूद सारे लोग लोगन को पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और लोगन फिर से एक बूढ़े आदमी के टोन में बात करने लगता है। उसके बाद में रोज यहाँ पर क्रिस को लेकर वॉक पर चली जाती है और दोनों वहां पर बात करते हैं, जहां पर क्रिस अपनी मदर के बारे में बताता है कि कैसे उनकी मौत हो गई थी। क्रिस ये कहता है कि वो रोज से बहुत प्यार करता है और वो उसको कभी भी छोड़कर जाना नहीं चाहता, और वो दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसी दौरान हमको दिखाया जाता है कि रोज के पिता बाकी लोगों के साथ एक गेम खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वहां पर कोई ऑक्शन चल रही हो, क्योंकि वहां पर क्रिस की फोटो लगी हुई थी। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर क्रिस को नीलाम करा जा रहा था और इस खेल के विनर कोई और नहीं बल्कि जिम हडसन होते हैं, जिससे यहाँ पर क्रिस की आखिरी बार बात हुई थी। अब उसी रात क्रिस लोगन की फोटो रॉड को भेजता है और रॉड उसे तुरंत ही पहचान जाता है और ये कहता है कि लोगन का असली नाम एंड्रयू है, जो कि कई दिनों से मिसिंग था। रॉड क्रिस को जल्दी से वहां से निकलने के लिए बोलता है और तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। अब तभी क्रिस वहां से जाने के लिए प्लान करता है और रोज को जल्दी से अपना सामान पैक करने को कहता है। और दोस्तों, एक और खास बात कि लोगन यानी कि एंड्रयू यहाँ पर वही इंसान है जिसको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसको किडनैप कर लिया गया था। खैर, अब जब रोज अपनी पैकिंग करने के लिए जाती है, तब क्रिस को वहां पर रोज की कुछ अलग अलग तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें वो कई सारे ब्लैक लोगों के साथ में थी, जहां पर वॉल्टर और जॉर्जिना भी थे। जी हाँ, ये सब देखकर क्रिस पूरी तरह से शॉक में चला जाता है और वो फौरन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे रोज की पूरी फैमिली क्रिस का रास्ता रोक लेती है। अब क्रिस यहाँ पर रोज को चिल्ला चिल्ला कर कार की चाबी देने के लिए बोलता है, लेकिन रोज घबराते हुए ये कहती है कि उसे चाबी मिली नहीं रही है। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद में रोज ही उस चाबी को दिखाकर ये कहती है कि वो उस चाबी को नहीं देगी। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं और दोस्तों, यहाँ पर ये सब क्रिस देखकर समझ जाता है कि रोज ने उसको फंसाया है और वो वहां से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन मिसी तुरंत ही उसको हिप्नोटाइज कर देती है अपनी चम्मच और उस कप से। तभी वो वहां पर तुरंत ही फ्लोर पर गिर जाता है। अब उधर रॉड क्रिस को फोन कर रहा था, लेकिन क्रिस फोन ही नहीं उठाता, इसलिए वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को ये बताता है कि शायद से गोरे लोगों ने उसको काबू में कर लिया है और हमको वहां पर जाना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। खैर, अब जब क्रिस की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक कमरे के अंदर एक सोफे के ऊपर बंधा हुआ पाता है और उसके सामने एक टीवी रखा हुआ था, जो कि अचानक से ही ऑन हो जाता है, और हम देखते हैं रोज के ग्रैंडफादर को, जिन्होंने एक मेथड का इन्वेंशन किया था, यानी कि यहां पर ये जो फैमिली थी वो एक कल्ट का हिस्सा थी और इस कल्ट का नाम होता है द ऑर्डर ऑफ द कोआगुला। अब ये इन्वेंशन ऐसा था जिसके जरिए एक इंसान की बॉडी के अंदर किसी और इंसान को जीवित रखा जा सकता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। यहाँ पर इस फैमिली की सबसे बड़ी मिस्ट्री सामने आती है और यहाँ पर रोज और उनके फैमिली मेंबर्स ऐसे लोगों को पकड़ा करते थे जो कि काफी जवान और फिजिकली स्ट्रांग हो, जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर ब्लैक पर्सन है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो आपको जरूर मेरी शुरुआत वाली बताई हुई एक बात याद होगी, जहां पर रोज के पिता ने क्रिस को एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसके जो पिता थे वो यहाँ पर रेस के अंदर एक ब्लैक पर्सन से हार गए थे। तो यहाँ पर उनको ये लगता था कि जो ब्लैक पर्सन के जेनेटिक्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, और यही रीजन है कि ये फैमिली सिर्फ ब्लैक पर्सन को ही चुनती है इस काम के लिए। और इसके बाद में यहाँ पर उन विक्टिम्स को बेचा जाता था उन लोगों को जिनकी खुद की उम्र अब खत्म होने को आई है, मतलब कि वो काफी बूढ़े हो चुके हैं या फिर जल्दी मरने वाले हैं। अब यहाँ पर ये तरीका कुछ और नहीं बल्कि एक सर्जरी है। अब इस सर्जरी को करने के दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति या फिर जिसकी उम्र अब खत्म होने वाली है उसके ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से को निकालकर ब्लैक पर्सन यानी कि विक्टिम के ब्रेन के सेम हिस्से से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे होता ये है कि उस बूढ़े व्यक्ति की मेमोरीज वगैरह एक जवान शरीर के अंदर सेफ हो जाती है, जस्ट लाइक अ मेमोरी कार्ड। और जो विक्टिम होता है उसका खुद के शरीर पर कोई भी काबू नहीं रहता। अब आपको यहाँ पर याद होगा कि मिसी ने क्रिस को एक संकन प्लेस में भेज दिया था जहाँ पर वो एक वॉइड की गहराइयों में जाता जा रहा था। तो होता यह है कि विक्टिम खुद के ही शरीर में उस जगह पर कैद होकर रह जाता है। ही कैन सी एंड लिसन एवरीथिंग, लेकिन मेन होस्ट वही बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए ये ट्रांसप्लांट काइंड ऑफ थिंग करी है। और यहाँ पर रोज की फैमिली के काफी सारे लोगों ने ऐसा किया हुआ है, और उन लोगों में वॉल्टर और जॉर्जिना भी हैं। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर वॉल्टर और जॉर्जिना भी खुद एक विक्टिम थे, और उनके अंदर जो होस्ट होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि रोज के ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर है, और इसलिए दोस्तों वो काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। वो दोनों दिखने में काफी जवान लग रहे थे लेकिन उनका बर्ताव किसी बूढ़े आदमी जैसा ही था। अब क्रिस यहाँ पर रोज के ग्रैंडफादर की ये वीडियो देखकर सब कुछ समझ जाता है, लेकिन तभी वहां पर टीवी पर अचानक से ही जिम हडसन आता है जिसने उसकी बॉडी को खरीदा था। वो क्रिस को बताता है कि वो सिर्फ उसकी आंखें चाहता है ताकि वो भी इस दुनिया को देख पाए और वो अपनी हॉबी को जी सके, क्योंकि यहाँ पर जिम हडसन भी पेशे में एक फोटोग्राफर था लेकिन कुछ टाइम फोटोग्राफी करने के बाद उसकी आंखें खराब हो गई थी। सो वो क्रिस की बॉडी को बिल्कुल एक फोटोग्राफर की तरह चाहता था, और क्रिस भी यहाँ पर फोटोग्राफर और फिल्म मेकर था तो उसके लिए वो एकदम परफेक्ट बॉडी थी। अब क्रिस अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है लेकिन फिर अचानक से स्क्रीन पर मिसी का वही कप और चम्मच आ जाती है, और उस चम्मच की आवाज को सुनकर यहाँ पर क्रिस हिप्नोटाइज हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डीन ऑलरेडी जिम हडसन की सर्जरी कर रहा होता है, यानी कि उसके ब्रेन के उस हिस्से को निकाल रहा होता है, और तभी जेरेमी वहां पर क्रिस को लेने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही वो क्रिस के हाथ को खोलता है तभी क्रिस होश में आ जाता है और वहां पर पड़ी हुई भारी चीज से जेरेमी के सर में वार कर देता है, जिससे कि जेरेमी का सर फट जाता है और जेरेमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जेरेमी को यहाँ पर यह लग रहा था कि क्रिस हिप्नोटाइज हो चुका है, लेकिन क्रिस जिस सोफा पर बैठा हुआ था उस सोफे के ऊपर काफी सारी रुई निकल रही थी, और इससे पहले वो हिप्नोटाइज हो जाता उसने उस रुई को निकाल कर अपने कान के अंदर भर लिया था ताकि उसको यहाँ पर ये आवाज ही ना आए। अब वहां से निकलकर क्रिस सबसे पहले जाता है डीन के सर्जरी रूम में और वहां पर वो उसको मार डालता है। अब दरवाजे के पास में मिसी आ जाती है और वो उसको फिर से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले क्रिस उस कप को ही तोड़ देता है और क्रिस एक चाकू लेकर मिसी आंख पर मारता है जिससे वो भी मारी जाती है। अब इसके बाद में जेरेमी को होश आ जाता है, वो क्रिस पर हमला करता है लेकिन यहाँ पर क्रिस उसको भी बुरी तरह से मार देता है। अब तभी हम यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि रोज यहाँ पर इन सब चीजों से अनजान थी। उसने ईयरफोन्स लगाए हुए थे और वो यहाँ पर सर्च कर रही थी बहुत सारे ब्लैक पर्सन के बारे में ताकि वो फिर से अपना नया शिकार ढूंढ सके। खैर, अब क्रिस यहाँ पर एक कार लेकर निकल रहा होता है तभी उसके सामने अचानक से जॉर्जिना आ जाती है और कार के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हम देखते हैं रोज पीछे से आ जाती है और शूट करने लगती है, और फिर क्रिस यहाँ से जॉर्जिना को लेकर भाग जाता है। और जब जॉर्जिना होश में आती है तो वो क्रिस पर हमला करना शुरू कर देती है और वो ये बोलती है कि उसने उसकी फैमिली को मारा है, यानी कि उसके अंदर रोज की ग्रैंड मदर ये बात बोल रही थी, जिसके चलते ये कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और उस एक्सीडेंट में जॉर्जिना मारी जाती है लेकिन क्रिस बच जाता है। अब वो कार से बाहर निकलता है लेकिन तभी वो ये देखता है कि पीछे से वॉल्टर दौड़कर आ रहा होता है और वो उसको पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि वॉल्टर क्रिस को मारे वो फ्लैश ऑन कर देता है जिससे वॉल्टर होश में आ जाता है। अब आपको याद हुआ कि यहाँ पर ये संकन प्लेस में उनका माइंड चला जाता है, यानी कि जो रियल पर्सन होता है, तो ये फ्लैश से होता यह है कि उसको एक उम्मीद की किरण मिलती है और वो अपनी बॉडी पर फिर से थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसनेस पा पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंड्रयू यानी कि लोगन के साथ में हुआ था। और फिर बस यहाँ पर ये होता है कि वॉल्टर रोज से गन लेकर पहले तो रोज को ही शूट करता है और फिर खुद को शूट करके मार देता है। अब यहाँ पर रोज अभी तक जिंदा थी और वो फिर से क्रिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, यानी कि उसको इमोशनल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर क्रिस इमोशनल नहीं होता और वो उसका गला घोटकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन इवेंचुअली वो रुक जाता है क्योंकि वो काफी अच्छा इंसान था। और उसके तुरंत बाद ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, यानी कि उसका दोस्त रॉड आ जाता है, जिसके बाद में वो यहां से दोनों निकल जाते हैं और शायद से रोज की मौत हो जाती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसकी एक अल्टरनेट एंडिंग भी यहाँ पर है, जिसके अंदर हम ये देख पाते हैं कि क्रिस रोज का गला घोटकर उसको मार देता है, और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उनको ऐसा लगता है कि क्रिस ने ही इन सबको मारा है, जिसके बाद में उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। एंड में हम रॉड की और क्रिस की कॉन्वर्सेशन को सुन पाते हैं, जहां पर क्रिस ये बोलता है कि वहां पर कैद होने से अच्छा है कि वो यहां पर प्रिजन में हमेशा कैद रहे, और उसने उन सबको मार दिया जो कि ये गलत काम कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी गेट आउट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में जो कि मैंने इस फिल्म के अंदर नोटिस करी हैं, लाइक जो जॉर्डन पील हमको बताना चाहते हैं। अब आपको शुरुआत में याद होगा कि पुलिस वाला बार बार क्रिस का ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा था, तो यहाँ पर वो पुलिस वाला अच्छा था, वो वहां पर उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर काफी सारे ब्लैक लोग गायब हो रहे थे, तो वो जस्ट इन केस उसका ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाह रहा होगा, ताकि अगर कल को कुछ भी दिक्कत होती है तो वो उसको ट्रेस कर पाए। और यहाँ पर रोज जानबूझकर गुस्से में आकर ब्लैक होने वाली चीज को मुद्दा बनाती है, ताकि पुलिस वाला लाइसेंस उससे ना ले, यानी कि यहाँ पर उसकी फिक्र करना और रेसिज्म वाली बात का मुद्दा उठाना बहुत ही ज्यादा बेकार था, यानी कि वो उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। अब आपको यहाँ पर कुछ बातें याद होंगी कि यहाँ पर वो सभी लोग ये पूछ रहे थे कि क्रिस कितना स्ट्रांग है और उसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको एक हेल्दी शरीर चाहिए था। एक और छोटी सी डिटेल, जब यहाँ पर ऑक्शन हो रहा था क्रिस को लेकर, तो रोज उसको वॉक पर कंफर्ट करने के लिए ले जाती है, लेकिन उसको वो कंफर्ट करने के लिए नहीं ले जा रही थी, बल्कि वो इसलिए ले जा रही थी ताकि वो ऑक्शन को ना देख पाए। और यहाँ पर एंड्रू यानी कि लोगन के नाक से ब्लीडिंग हुई थी जब वहां पर उसके चेहरे पर फ्लैश पड़ा था, तो यहाँ पर उस वक्त एंड्रू की कॉन्शियसनेस होश में आ गई होगी और इसलिए उसने आकर क्रिस से ये बोला था कि गेट आउट गेट आउट। अब यहाँ पर दो और चीजें हैं, लाइक यहाँ पर वॉल्टर स्टार्टिंग में दौड़ रहा था, तो यहाँ पर ऑब्वियसली उसके अंदर रोज के ग्रैंडफादर थे, तो यहाँ पर वो दौड़कर देख रहे थे कि आखिरकार जिससे वो हारे थे यानी कि एक ब्लैक पर्सन से, उसकी बॉडी के अंदर भागना कैसा लगता है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में एक डियर का एक्सीडेंट कार से हो गया था, जहाँ पर क्रिस उस मरते हुए डियर को देखता रहता है, जिसके बाद में इवेंचुअली उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में जब रोज के घर पर एंड में क्रिस को सोफे पर बांधकर रखा गया था, तो उसके जस्ट सामने भी एक डियर का सर था। तो यहाँ पर आप रोल्स रिवर्सल देख रहे हो कि स्टार्टिंग में कैसे क्रिस ने उस डियर को मरते हुए देखा था, और उसके बाद में सेम चीज क्रिस के साथ में भी होने वाली थी, लेकिन इवेंचुअली वो बच गया। यहाँ पर एक और मेटाफर भी है, वो डियर जो है वो क्रिस को उसकी मदर की याद दिलाता है, क्योंकि एक सीन में क्रिस रोज को अपनी मदर के बारे में बताता है कि उसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, लेकिन यहाँ पर उस चीज का जिम्मेदार क्रिस खुद को मानता है, क्योंकि बचपन में हुआ ये था कि वो बस टीवी देखते जा रहा था और उसको अपनी मदर का ख्याल ही नहीं रहा, और अगर शायद से वो 911 पर उस रात कॉल कर दे तो शायद से उसकी मदर बच जाती, क्योंकि एक्सीडेंट होने के कई घंटों के बाद में वो मारी गई थी और वो रात भर टीवी ही देखता रहा था, जिसका गिल्ट आज तक उसको था। और शायद से आपने एक चीज नोटिस करी या फिर नहीं, लेकिन ये जो मूवी है वो द स्केलेटन की से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर ब्लैक पर्सन और व्हाइट पर्सन वाली बात वहां पर नहीं थी, और वहां पर साइंस की जगह पर वुडू ब्लैक मैजिक किया गया था। बेसिकली वहां पर सोल्स को ट्रांसफर करा जाता था, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा सिमिलर है, एंड वो भी काफी बढ़िया मूवी है, एक ऑनरेबल मेंशन है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, मैंने वो भी एक्सप्लेन कर रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और थ्योरीज वगैरह पसंद आई होंगी, ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने नोटिस करी वो भी आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूं तो आप मुझे जरूर बताना, लाइक करना वीडियो को, ढेर सारे कमेंट्स कर देना, और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ऑसम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको गिव अवे के रूल्स के बारे में बता देता हूँ। तो ₹500 के 5 अमेज़न वाउचर जीतने के लिए 2 स्टेप्स हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो, और अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो तो मेरा कोड यूज कर लेना Ghost25। फिर एक ट्रांजेक्शन करो, चाहे स्विगी से खाना ऑर्डर कर लो या फिर अमेजोन से फोन, और हाँ, यहाँ पर अपना ऑर्डर आपको कैंसिल नहीं करना है, जिसके बाद में 5 सिलेक्टेड विनर्स को मिलेंगे अमेजोन वाउचर्स।
तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे।